दूसरा राजा अध्याय 8 पद 1। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था उसे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वो इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। इसलिए वो इस स्थान को छोड़कर पेलिस्तियों के देश में 7 वर्ष तक रही और 7 वर्ष बीतने के बाद वो वापस लौटी तो देखा कि लोग उसके घर और जायदाद और भूमि पर कब्जा कर चुके हैं। ऐसा हुआ कि जिस समय राजा एलिशा के सेवक गहजी से बात कर रहा था और गहजी उसको एलिशा के चमत्कारों के बारे में बता रहा था, उस समय ऐसा हुआ कि स्त्री राजा के पास आई और निवेदन किया कि राजा उसे उसकी संपत्ति वापस दिला दे। गहजी इस स्त्री के बारे में ही राजा को बता रहा था कि उसका यह बेटा कैसे मर गया था और वो कैसे जीवित किया गया। उसी समय वो राजा को मिलने आई कि शायद वो अपनी संपत्ति पा सके। गहजी ने कहा, प्रभु जीवित है, यही वो स्त्री है, ये उसका बेटा है जिसके बारे में बता रहा था। राजा ने जांच की कि क्या यही वो लड़का था जो जीवित किया गया। राजा ने उसकी भूमि और उसकी उपज उसे दिला दी। अध्याय 8 पद 7। और एलिशा दमिश्क को गया बेन-हदद के देश में। अध्याय 8 पद 7 और 8। और जब आराम के राजा बेन-हदद को, जो रोगी था, ये समाचार मिला कि परमेश्वर का भक्त यहां भी आया है, तब उसने हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा और उसके द्वारा यहोवा से ये पूछ कि क्या बेन-हदद जो रोगी है वो बचेगा कि नहीं। आपको याद होगा कि पिछली बार हम पढ़ रहे थे एलिया होरेब पर्वत की एक गुफा में जा छिपा था, तब प्रभु ने कहा, तू यहां क्या कर रहा है एलिया? एलिया ने परमेश्वर से कहा, मुझे तेरे प्रति जलन हुई है, क्या तू जानता है उन्होंने तेरी वाचा तोड़ डाली, उन्होंने तेरी वेदियां तोड़ डाली और तेरे नबियों को मार डाला, एक मैं ही बचा हूं। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू यहां क्या कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और परमेश्वर ने कहा, यहां से निकल और दमिश्क को जा और हजाएल का राजा होने के लिए अभिषेक कर। बाद में एलिशा आराम को गया जहां राजा बेन-हदद रोगी है और वो हजाएल को भेजता है जिसे एलिशा ने आराम का राजा होने के लिए अभिषेक किया था। राजा ने उसे भेजा कि एलिशा से ज्ञात करे कि वो रोग से मुक्त होगा या नहीं। इसलिए हजाएल एलिशा के पास आकर कहने लगा, राजा जानना चाहता है कि वो रोग से मुक्त होगा या नहीं। एलिशा उसे देखता रहा और हजाएल ने कहा, क्या हुआ है? फिर एलिशा ने कहा, वो रोग से मुक्त होगा परंतु फिर मर जाएगा। वो उसे देखता रहा और रोने लगा और हजाएल बहुत विचलित हो गया। अध्याय 8 पद 12 और 13। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इसराइलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा, अनेक गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीका है वो क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे? एलिशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू आराम का राजा हो जाएगा। यहां फिर कमाल की आत्मिक दृष्टि एलिशा के पास है, जो ये देख सका कि भविष्य में क्या होगा, अर्थात हजेल इसराइल की संतान के साथ क्या क्या करेगा। ये वैसा ही है जैसे यीशु मसीह अपनी विजय यात्रा के दिन जैतून की पहाड़ से यरूशलेम को देखकर रो पड़ा था। उसने कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, क्या ही भला होता कि तू, हां तू ही, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, और तेरे बैरी तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। और वो रो रहा था क्योंकि वो जैतून पर्वत से देख सका कि उस शहर में क्या होने वाला है। वो उसके आने वाले विनाश को देखकर रोया। यहां एलिशा देख पाया कि ये मनुष्य क्या करने जा रहा है, घोर विनाश और अत्याचार। वो रोने लगा और हजेल परेशान हो गया। उसने कहा, क्या मैं कुत्ते सरीका हूं कि ऐसा बड़ा काम करूं? एलिशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू आराम का राजा हो जाएगा। वो वापस बेन-हदद के पास गया और उसने पूछा, भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा है? उसने उत्तर दिया, नबी ने कहा है कि तू अवश्य ही रोग से मुक्त हो जाएगा। परंतु उसने रजाई को भिगोकर उसको उसके मुंह पर ऐसे उड़ा दिया कि वो मर गया, और हजाएल आराम का राजा हो गया। अध्याय 8 पद 16। इसराइल के राजा आहाब के पुत्र योराम के पांचवें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशोपात जीवित था, तब यहोशोपात का पुत्र योहराम यहूदा पर राज्य करने लगा। यहां आप पाते हैं कि दोनों राजाओं के नाम एक ही थे। यहोराम और योराम दोनों का एक ही अर्थ है। एक आहाब का पुत्र है और दूसरा यहोशोपात का पुत्र। यहोशोपात और आहाब दोनों एक ही विचार के थे। वे मित्र भी थे और षड्यंत्रकारी भी थे। दोनों ने अपने पुत्रों के नाम एक ही रखे। अध्याय 8 पद 17 और 18। जब वो राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वो इसराइल के राजाओं की सी चाल चला, जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री आहाब की बेटी थी। इस तरह उत्तरी राज्य में मूर्ति पूजा और सब अधर्म यहोराम के द्वारा यहूदा में प्रचलित हो गया। वो एक दुष्ट और बुरा राजा था। अध्याय 8 18 से लेकर 20 तक। और वो उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी यहोवा ने यहूदा को नाश करना ना चाहा। ये उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। वो उनको नष्ट करने आया, परंतु एदोमियों ने उसे हरा दिया, और फिर लिब्ना ने भी यहूदा के विरुद्ध विद्रोह में साथ दिया। अध्याय 8 पद 24। निदान योराम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अहजया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ये अहजया आहाब और इजबेल का रिश्तेदार था, शायद पोता था। अध्याय 8 पद 25 और 26। आहाब के पुत्र इसराइल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा योहराम का पुत्र अहजया राज्य करने लगा। जब अहजया राजा बना तब 22 वर्ष का था। और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया, और उसकी माता का नाम अतल्या था। अतल्या एक दुष्ट स्त्री थी। अध्याय 8 पद 26 से लेकर 29 तक। जो इसराइल के राजा ओम्री की पोती थी, वो आहाब के घराने की सी चाल चला, और आहाब के घराने की नाई वो काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वो आहाब के घराने का दामाद था, और वो आहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत में आराम के राजा हजेल से लड़ने तो गया, और आरामियों ने योराम को घायल किया। सो राजा योराम इसलिए लौट गया कि इज़राइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको आरामियों के हाथ से उस समय लगे जब वो हजेल के साथ लड़ रहा था। और आहाब का पुत्र योराम तो इज़राइल में रोगी रहा, इस कारण यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहजाया उसको देखने गया। अहजाया राजा को मिलने गया कि उसके रोग में उसे दिलासा दे। अगले अध्ययन में हम लोग अध्याय 9 देखेंगे और इन दो राजाओं के मारे जाने के बारे में पढ़ेंगे। इनकी मृत्यु के बाद येहू इसराइल का राजा बना और यहूदा का भी एक नया राजा बना। दाऊद कहता है भजन संहिता 119 के 11 पद में, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजन संहिता 119 का 130 पद, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। भजन संहिता 119 105 पद, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर अपने वचन के अध्ययन द्वारा अपना ज्ञान आप में बढ़ाए और हम परमेश्वर के प्रति समर्पण के महत्व समझने पाए और अविश्वास के संकट को जाने। प्रभु हमें वचन से सिखाए कि विश्वास में उसके साथ कैसे चले। परमेश्वर आने वाले दिनों में, विशेष करके जब बुरे दिन अधिक से अधिक बढ़ते जाएंगे, तब वो हमें आत्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे। यदि आपके पास आत्मिक दृष्टि नहीं है तो आप नीचे ही नीचे गिरते जाओगे। प्रभु आपको आत्मिक दृष्टि दे कि आप अनदेखे को देख सके जो दूसरे नहीं देखते। आप देख सके कि परमेश्वर कार्य कर रहा है और उसका हाथ उन सब बातों में है जो हो रही है, और परमेश्वर हमारे सामने अपनी इच्छा और अपने उद्देश्य ला रहा है, क्योंकि मसीह यीशु अति शीघ्र आने वाला है। हम इतिहास में इस अंधकारमय समय में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु आपको तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करे। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ और आशा के द्वारा थामे जाएं, जो परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमारी है।